नमस्कार। आज हम डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की पुस्तक महाशक्ति की लोक यात्रा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय का नाम है भावपरक विदाई लेकर शांतिकुंज आगमन। ये वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी के जीवन का एक बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है।
जी हाँ, ये वो समय था जब एक तरफ तो परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी अपनी तीसरी हिमालय यात्रा पर जा रहे थे और ये यात्रा थोड़ी अनिश्चित भी थी, और दूसरी तरफ गायत्री परिवार का जो केंद्र था मथुरा में गायत्री तपोभूमि, वो हरिद्वार में नए बने शांति कुंज में शिफ्ट हो रहा था।
हाँ, तो मतलब एक बड़ा संक्रमण काल था ये। और इसी पृष्ठभूमि में हम वंदनीय माता जी के मन की स्थिति, उनके सामने जो भावनात्मक चुनौतियां थीं, उसे समझने की कोशिश करेंगे।
बिल्कुल, ये अध्याय असल में मथुरा से विदाई और फिर शांति कुंज के वो शुरुआती दिन, उनके बारे में है। गुरुदेव की यात्रा का पता नहीं था कि वो लौटेंगे या नहीं, तो विदाई का जो माहौल था वो बहुत ही, आप कह सकती हैं, हृदय विदारक था। गुरुदेव ने तो फिर भी अपनी पीड़ा, अपनी व्यथा अखंड ज्योति पत्रिका में लिख दी थी, पर वंदनीय माता जी, वो एक माँ थी, एक नारी थी, उनके लिए ये सब चुपचाप सहना कहीं ज्यादा कठिन रहा होगा।
ये बात सही है, और उनके सामने तो जैसे एक साथ कई मोर्चे खुल गए थे। भावनात्मक स्तर पर सबसे पहले तो अपनी बेटी शैल बालाजी, जिन्हें प्यार से शैलो कहते थे, उनका विवाह हुआ 3 जून 1971 को, और फिर तुरंत विदाई।
जी, और उन्हें ये पता था कि बेटी जब पहली बार ससुराल से वापस आएगी तो वो माँ वो मथुरा में नहीं मिलेंगी।
हाँ, वो तो शांति कुंज में होंगी, तब कर रही होंगी, ये सोचना ही कितना मुश्किल रहा होगा।
बिल्कुल, फिर अपने बेटे मृत्युंजय जी, जिन्हें सतीश कहते थे, और बहू निर्मल जी, उनसे भी विदा लेना था। उन पर अचानक से अखंड ज्योति संस्थान का पूरा भार आ गया, वो भी कम अनुभव के साथ, ये चिंता भी थी मन में।
और शायद जो सबसे ज्यादा कठिन रहा होगा, वो अपनी लगभग 2 साल की पोती से बिछड़ना, जो बस अम्मा जी कहना सीख ही रही थी, उसकी पूरी दुनिया तो माता जी की गोदी ही थी।
घर के सदस्य जो हर सुख दुख में बस अपनी माँ को ही पुकारते थे।
अच्छा,
वो सब भी विदाई देने आए थे, सबकी आंखें नम थीं, कोई कुछ बोल नहीं रहा था, पर सबका मौन जैसे यही कह रहा था, पिताजी तो जा ही रहे, माँ आप ही रुक जाओ।
ओह, ये तो किसी भी माँ के लिए बहुत व्याकुल करने वाला दृश्य होगा।
यकीनन, और वंदनीय माता जी तो जगदम्बा स्वरूप थीं, इतनी सारी संतानों की पीड़ा वो महसूस कर रही थीं।
पुस्तक में उस विदाई समारोह का भी जिक्र है जो गुरुदेव ने मथुरा में रखा था, ताकि सब लोग उनसे मिल सकें हिमालय जाने से पहले। बेटी की विदाई हुई, फिर बाकी परिवार वाले भी विदा हुए।
जी, और फिर गायत्री तपोभूमि में पंडित लीलापत शर्मा जी के मार्गदर्शन में कुछ कार्यकर्ता रुक गए, बाकी वंदनीय माता जी, गुरुदेव और कुछ कार्यकर्ता वो अखंड दीपक को लेकर शांति कुंज के लिए निकल पड़े।
लेकिन ये विछोह का अंत नहीं था।
नहीं, बिल्कुल नहीं। शांति कुंज पहुंचने के कुछ ही दिन बीते थे कि उन्हें अपने आराध्य, अपने गुरुदेव को विदा करना पड़ा हिमालय तप के लिए।
ये शायद सबसे बड़ा आघात रहा होगा, जिसके लिए सब कुछ छोड़ा, वही अब छोड़कर जा रहे थे एक अनिश्चित यात्रा पर।
हाँ, और ये विदाई भी बड़ी चुपचाप हुई, गोपनीय ढंग से। एक सुबह जब बाकी लोग सो ही रहे थे, गुरुदेव चले गए।
और ऐसी स्थिति में भी वंदनीय माता जी ने ही सबको संभाला, सबको धीरज बंधाया।
जी, यहाँ उस समय के शांति कुंज का भी वर्णन है। आज जैसा भव्य नहीं था बिल्कुल।
कैसा था तब?
बस 2-3 कमरे, जहाँ आज अखंड दीप है ना, बस वहीं। एक कुआं था पानी के लिए और एक गाय।
अच्छा, गाय दीपक की घी के लिए।
हाँ, उसी के घी से दीपक जलता था, बिल्कुल जैसे पुराने ऋषियों के आश्रम होते थे ना, वैसा माहौल था, शांत एकांत। और वंदनीय माता जी वहीं रहकर अपने आराध्य का ध्यान करते हुए कठोर साधना में लग गईं। उनकी वो मौन साधना ही गायत्री परिवार के लिए प्राण और प्रकाश बनी, संगठन को शक्ति वहीं से मिलती रही।
तो ये अध्याय वंदनीय माता जी के मातृत्व की एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखाता है। उनकी सहन शक्ति, उनका समर्पण, विश्व कल्याण के लिए उन्होंने व्यक्तिगत मोह और पीड़ा को पीछे छोड़ दिया।
सही कहा आपने, ये त्याग और तितिक्षा की पराकाष्ठा है, मतलब कितना कुछ सहा उन्होंने। और यहाँ एक बात सोचने पर मजबूर करती है कि इतनी गहरी व्यक्तिगत वेदना, इतना दुख, उसको सहते हुए भी लोक हित के लिए शांत रहना, स्थिर बने रहना, इस असीम आंतरिक शक्ति का स्रोत क्या रहा होगा? क्या ये केवल इच्छा शक्ति थी, या अपने आराध्य पर, अपने लक्ष्य पर अटूट विश्वास?
ये प्रश्न वाकई हमें वंदनीय माताजी के जीवन और उनके विराट व्यक्तित्व पर और गहराई से सोचने को प्रेरित करता है।